सिद्धं शुद्धं पणमिया जिनिंद वर्णेमि चंद मकालंकं गुणरयण भूषणुदयं जीवस्य पर्वणं वोच्छं। संसारी जीव की अशुद्ध अवस्था के लिए, उसका वर्णन करने के लिए बीज प्ररूपणाओं का माध्यम बनाया है आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने। सर्वप्रथम एक प्रश्न के साथ अपनी बात को शुरू करूंगी। बीज प्ररूपणाओं के नाम आपको बताना है। जिसको बीज प्ररूपणाओं के नाम आते हों, हैंड रेज करेंगे और किसी एक को अनम्यूट किया जाएगा स्पॉटलाइट करके। बीज प्ररूपणाओं के नाम देखो बहन जी, गोमठ सार जीव कांड के अंदर जो बीज प्ररूपणाएं आचार्य देव ने कहने का संकल्प लिया है, वे बीज प्ररूपणाएं कौन सी हैं? देखो लीसा काले का भी है और हैं? अच्छा अचला जी को स्पॉटलाइट करें। हाँ अचला जी बताइए। हाँ 14 मारना है। 14 मारना को एक में लिया है या 14 में लिया है? हाँ कितने हो गई बीज प्ररूपणा? ठीक है। देखो प्रश्न एक होता है, उत्तर कोई एक बताता है, लेकिन उस उत्तर से सभी लोग लाभान्वित होते हैं। बीज प्ररूपणा के नाम गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा 14 मारनाएं उसमें मिला दी, तो 14 5 19 और उपयोग 1, ऐसे 20 प्ररूपणाएं कही गई हैं। उन 20 प्ररूपणाओं में जीव द्रव्य का विशेष रूप से कथन किया गया है। अब दूसरा प्रश्न पूछती हूँ, संज्ञाएं कितनी हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं? संज्ञा कितनी है, उनके नाम बताना है। हैंड रेज कीजिएगा जिसको आता हो, और बहन जी किसी को स्पॉटलाइट करें। संज्ञा सभी लोग देखो, शशि जैन है, शशि से पूछो। संज्ञा के भेद और उनके नाम बताइए।
वंदामी माता जी, संज्ञा 4 है। संज्ञा 4 है माता जी, वंदामी।
ताली बजाइएगा। आहार भय मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं हैं। चलिए अब इसके साथ प्रारंभ करते हैं। 14 मारनाओं में पहली जो गति मारना है, उसमें चारों गतियों के स्वरूप आप जान चुके हैं। अब 4 गति के पश्चात एक पंचम गति को लिया है, जो आवागमन को बतलाने वाली नहीं, बल्कि जहां से गति आगति सब बंद हो जाती हैं, ऐसी सिद्ध गति। जय लो पूज्य गणिनी ब्रह्म श्री ज्ञान मती माता जी की जय। सिद्ध गति का स्वरूप पेज नंबर 57 और गाथा नंबर 51। जाई जरा मरण भया संजोग विजोग दुख सन्नाओ,
संजोग विजोग दुख सन्नाओ,
रोगादि गाय जिससे न संति साहो दिसिद गई,
न संति साहो दिसिद गई।
सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। जाय जरा मरण भया संजोग विजोग दुख सन्नाओ, रोगादि गाय जिससे न संति साहो दिसिद गई। जाति जरा मरण भया संयोग वियोग दुख संज्ञा, रोगादि गाय से अस्याम न संति सा भवति सिद्ध गति। हाँ, अर्थ है इसका कि जहां पर जाति जरा मरण भय, जन्म जरा माने बुढ़ापा, मरण भय, संयोग वियोग, दुख और संज्ञाएं नहीं होती हैं, रोग आदि नहीं होती हैं, जिस गति में यानी जिस जगह ये नहीं होती हैं, जिस गति में नहीं होती हैं, सा भवती सिद्ध गति, वह सिद्ध गति होती है, यानी उसका नाम है सिद्ध गति। नाम से भी कार्य स्पष्ट है कि सिद्ध गति माने जहाँ सिद्ध पद की प्राप्ति हो गई। गति शब्द इसलिए है कि एक प्रकार एक बार में ही जो मोक्ष में चले गए, सिद्ध शिला पर चले गए, अविग्रह जीवस्य विग्रह रहित हो करके और चले गए, देह रहित हो गए, वहां से पुनः संसार में आएंगे नहीं। तो गति तो एक बार हुई लेकिन आ गति अब रुक गई, उनकी अब नहीं होती है, ऐसी उस गति को सिद्ध गति कहते हैं। तो एक प्रकार से इसको ये जानिएगा कि जाति जहाँ नहीं है, जाति माने पांचों इंद्रियों को, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक पांचों प्रकार की जाति नहीं है जहाँ। जरा माने बुढ़ापा नहीं है, मरण नहीं है, भय नहीं है, अनिष्ट संयोग नहीं है, इष्ट का वियोग नहीं है, और इनसे होने वाले इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग से उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं वह भी जहाँ नहीं है, और सन्नाओ माने संज्ञाएं भी नहीं है, ना आहार, ना भय, ना मैथुन, ना परिग्रह, इन समस्त संज्ञाओं से, इच्छाओं से, वांछाओं से जब रहित अवस्था आ जाती है, और रोगादिगाय जिससे जहाँ पर रोगादिक भी नहीं होते, रोग से मतलब शारीरिक मानसिक आगंतुक ये सब व्याधियां जो है वो नहीं होती, उस गति को सिद्ध गति कहते हैं। ये सिद्ध शिला पर जाने वाले मनुष्यों की, सिद्धों की ये सिद्ध गति मानी जाती है। तो जैसे एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म के उदय से ये जीव एक इंद्रिय आदि पर्यायों को धारण करता है, माने कर्मों की अवस्था को बताते हैं कि जब कर्म का उदय संसार अवस्था में होता है तब ये जीव एक इंद्रिय आदि पर्यायों में जन्म धारण करता है। आयु कर्म का उदय होता है तो उस स्थिति में रहता है जिस भी जिस गति में है वहां पर, और आयु कर्म जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे शारीरिक शिथिलता आती है तो वह बुढ़ापा की अवस्था है, यानी बालक अवस्था, युवा अवस्था और बुढ़ापा की अवस्था। जैसे आप छेड़ाला में पढ़ते ना, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ऐसी चीजों को बताया आचार्य देव ने जो अपने जीवन में प्रैक्टिकल घटित होती हैं। बचपन में ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान से मतलब आत्म ज्ञान नहीं रहता, बाकी संसार की स्थितियों का तो सबका ज्ञान रहता है। ये बच्चा जन्म लेते ही माँ के स्तन से ही मुंह लगा लेता है, उसे किसी ने सिखाया नहीं रोना हंसना, तो ये सब उसकी अनादि अविद्या के जो संस्कार हैं उन सबको संसार अवस्था में प्राप्त करता है, और इन सबको पार करके जहाँ कर्मों का अंत हो गया माने घातिया अघातिया कर्मों का नाश कर दिया, तो फिर किसी प्रकार का कर्म उनकी आत्मा के साथ नहीं रह जाता, और कर्मों के नहीं रहने से फिर शरीर रहित हो जाते हैं और केवल आत्मा के सुख में निमग्न होकर के सिद्ध परमेष्ठी भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं। तो वही गति कहलाती है सिद्ध गति। इस प्रकार की सिद्ध गति को प्राप्त करने के लिए ही ये जीव प्रयत्न करता है मानव गति में, मनुष्य गति में आकर के। बाकी तीन गतियों में उसका कोई पुरुषार्थ नहीं चलता, चार गतियों में केवल एक मनुष्य गति ही ऐसी है जहां से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीव प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है। तो इस सिद्ध गति के पश्चात में आगे जा करके गति मारना से हम लोग इंद्री मारना में भी आएंगे। एक गाथा शेष है, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या। तलिलीन मधुग विमलम धूमशिलागा विचोर भय मेरु,
धूमशिलागा विचोर भय मेरु,
तट हरि खज साहुंतियो,
तट हरि खज साहुंतियो,
मानुष पज्जत संकंका,
मानुष पज्जत संकंका।
सामूहिक गाथा पढ़िएगा। तलिलीन मधुग विमलम धूमशिलागा विचोर भय मेरु, तट हरि खज साहुंतियो, मानुष पज्जत संकंका। तलिली नवधुग विमलम धूम शिलागा विचोर भय मेरु, तट हरि खज सा भवंतियो, भवंति ही मानुष पर्याप्त संख्यांका। एक विलक्षण गाथा है जिसके माध्यम से पर्याप्त मनुष्यों की संख्या बताते हैं। तो तकार से लेकर सकार पर्यंत जितने अक्षर इस गाथा में बताए गए हैं उतने ही अंक प्रमाण मनुष्यों की, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। पर्याप्त और अपर्याप्त की बात आप जान चुके हैं। जहां पर जीव आहार शरीर आदि पर्याप्तियों को पूर्ण करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं तो वह पर्याप्त अवस्था होती है, और जहां नहीं प्राप्त कर पाते तो अपर्याप्त अवस्था कहलाती है। तो इस गाथा में कहा कि तकार आदि अक्षरों के अंकों का ग्रहण करना चाहिए, परंतु किस अक्षर से किस अंक का ग्रहण करना चाहिए इसके लिए व्याकरण का सूत्र बताया। कट पय पुरस्त वर्णय नव नव पंचाष्ट कल्पित क्रमशः स्वर्यन शून्यम संख्या मात्रो परिमाक्षरम त्याज्यम। ये गाथा सर्वोपयोगी है, अर्थात का से लेकर आगे के झा तक के नौ अक्षरों को क्रम से एक दो आदि नौ अंक समझने चाहिए। क्या समझे? का से लेकर झा तक आप गिने, इसको कितने होते हैं? नौ। का खा गा घा अंगा च छ ज झा, यहाँ तक नौ संख्या हुई। तो नौ अक्षरों के क्रम से एक दो आदि नौ अंक समझने चाहिए। इस प्रकार टा से लेकर नौ अंक और पा से लेकर पांच अंक तथा या से लेकर आठ अक्षरों के आठ अंक एवं सोलह स्वर और न, इनसे शून्य जीरो शून्य समझना चाहिए। किंतु मात्रा और उपरिम अक्षर इससे कोई भी अंक ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस नियम के अनुसार और बताया, और अंका नाम वामतो गति, अंकों की विपरीत गति होती है, इधर से बाएं तरफ से उनकी गिनती की जाती है, तो अंकों की विपरीत गति होती है। इस नियम के अनुसार इस गाथा में कहे हुए अक्षरों से पर्याप्त मनुष्यों की संख्या निकलती है। अब देखो इतने सारे अंक दिए गए हैं तो ये पर्याप्त मनुष्यों की संख्या की अंक संख्या यहाँ पर बताई गई है, अर्थात इतने अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्य होते हैं। और पर्याप्त अवस्था प्राप्त करके भी जब वे अपनी पर्याप्त अवस्था का उपयोग नहीं कर पाते तो उनका पर्याप्तपना भी सार्थक नहीं हो पाता। तो आपको जानना है कि इतने प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों की संख्या में हम और आप भी हैं। इन चारों गतियों में एक मनुष्य गति ही ऐसी गति है जो आठों कर्मों का नाश कर ये जीव सिद्ध पद को प्राप्त कर सकता है। अतएव इस दुर्लभ मनुष्य पर्याप्त को प्राप्त करके संयम को धारण करके संसार परंपरा को समाप्त करना चाहिए। सबका सार समझो गति मारना का ये निकला। गतियां चार हैं जो संसार में परिभ्रमण कराने वाली हैं, लेकिन इन चारों गतियों में मनुष्य गति ऐसी है कि जो अगति को यानी कि सिद्ध गति को प्राप्त कराने वाली है। आगे इंद्री मारना चलेगी, उसको कर लेंगे।